नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पोत पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक आज शाम तक भारत पहुंच जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने बताया कि बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण और प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जहाज को माल उतारने में कोई देरी न हो। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाडकी सुरक्षित रूप से भारत के मार्ग पर है। श्री सिन्हा ने कहा कि जहाज लगभग 81,000 टन कच्चे तेल मुरबान का परिवहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में कोई घटना नहीं हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और कहीं भी पेट्रोल की कमी का कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड के माध्यम से की गई डिलीवरी पिछले महीने की 53% से बढ़कर अब 72% हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में मौजूद लगभग 550 भारतीय नागरिक जमीनी सीमा के रास्ते आर्मेनिया में प्रवेश कर गए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद भारतीय दूतावास पूरी तरह से कार्यरत है। अमरीका, इसराइल और ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इस बीच आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 48 उड़ानों की परिचालन करेंगे। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान के किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आयोग ने सिद्धनाथ गुप्त को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक, अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त, एन रमेश बाबू को सुधार सेवा मामलों के महानिदेशक और अजय मुकुंद रानाडे को कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 26 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव के लिए पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। लोकसभा में 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई है तथा रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि 2013-14 में रेलवे का बजट सिर्फ 63,000 करोड़ रूपये ही था, जो अब बढ़कर 2,78,000 करोड़ रूपये हो गया है। कांग्रेस के तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल फल रही है। सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी ताकि देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अधिक लाभ पहुंच सके। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अप्रैल 2016 में शुरू हुई स्टैंड अप इंडिया योजना पिछले वर्ष मार्च में समाप्त हो गई।
When Prime Minister launched the startup schemes,
जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप योजनाओं की शुरुआत की थी तो ये एक नया विचार था, पर ये महसूस किया गया कि ये केवल शहरी क्षेत्रों या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है और इसमें वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाएं शामिल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नया उद्यम शुरू करने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना बैंक की हर शाखा के माध्यम से आरम्भ की गयी और इससे वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को लाभ हुआ है।
एंड इट हैज एक्चुअली बेनिफिटेड SC/ST एंड विमेन।
राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में पिछले सप्ताह ही ये विधेयक पारित हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।